ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 2। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेहोसी नियतात्म भी। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की कृपया अनुवाद मेरे पीछे दोहराइएगा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करता है। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं। अंत समय उनकी क्या दशा होगी? मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुरेदने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है तो भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुन जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? भगवान को प्राप्त करने का साधन, भगवान को प्राप्त करने का तरीका जो है 8वें अध्याय में बताया गया। 8वें अध्याय में पहले से लेके जो चौथा श्लोक है, पहले जो 4 श्लोक हैं, उसमें जो प्रश्न किए थे अर्जुन ने, जो भगवान ने कुछ बातें बताई थी 7वें श्लोक के अंत में, उनको बेस करके यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न कर रहा है। अभी उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है 8 प्रश्न आए, 8 प्रश्न, कौन से 8 प्रश्न हैं, उनका उत्तर पाने का प्रयास करें। 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक जो है चर्चा आ रही है कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार से मृत्यु के समय पे याद करना चाहिए, उसका क्या लाभ होता है। 9वें से लेके 13वें श्लोक तक आती है फिर भगवान को स्मरण करने की बात, पर किस तरह से? ध्यान के द्वारा, जो चर्चा हम 6ठे अध्याय में कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा जो है ग्लिम्स जो है फिर यहाँ दिया जाता है। 14वें से लेके 16वें श्लोक तक चर्चा आ रही है शुद्ध भक्ति की। पहले वाली चर्चाएं जो हैं वो हैं योग मिश्रित भक्ति, और 14वें के बाद जो बात आ रही है वो प्योर डिवोशनल सर्विस, अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की चर्चा हो रही। और 17वें से लेके 22वें श्लोक तक जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, मुकाबला किया जा रहा है ये भौतिक संसार का और आध्यात्मिक संसार का। और फिर बताया जा रहा है कि जो भगवान का धाम है, जो सुप्रीम अबोर्ड है, उसके क्या गुण हैं और उसकी क्या क्वालिटीज। अब चर्चा करते हैं सातवें अध्याय के आखिरी दो श्लोकों, 29वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरे तरीके से जानते हैं। श्लोक के अंदर जो है तीन शब्द आए हैं, जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुतिया यतंतिते ते ब्रह्म तद विद्धु कृष्णम अध्यात्मम कर्म शाखिलम। एक ब्रह्म शब्द आया है नंबर एक, एक अध्यात्मम शब्द आया है और एक कर्म शब्द आया है, तीन शब्द आए। अगले श्लोक के अंदर फिर चर्चा आती है, साधि भूतादि देवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च अपि च माम विदु विदु युक्त चेतसा। अधिभूत अधिदेवम अधियज्ञम और प्रयाण काल के समय आपको कैसे स्मरण किया जा सकता है इसकी चर्चा है। तो जो परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते। भगवान ने अगर आप पढ़ेंगे सातवां अध्याय तो सातवें अध्याय के अंदर जो है शुरुआत में अर्जुन को प्रश्न नहीं करने दिया, एक रॉ में बोलते चले आ रहे, परंतु यहाँ आठवें अध्याय के बिगिनिंग में ही अर्जुन ने इंटरप्ट कर, भगवान ने छह बातें बताई हैं, सातवीं बात बताई है प्रयाण काल के समय की बात, तो अर्जुन ने यहाँ पर एक इंटरप्शन किया, एक क्वेश्चन पूछ किए। अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में भगवान ने कहा है 29वें श्लोक के अंदर, यहाँ अर्जुन कहता है ब्रह्म क्या है, फिर आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ये अर्जुन ने जो है यहाँ पर पांच प्रश्न जो है पहले श्लोक के अंदर किए। दूसरे श्लोक में आगे कंटिन्यू करता है, छठा प्रश्न करता है अधियज्ञ, सातवां प्रश्न करता है अत्र इस शरीर के अंदर कैसे रहता है, हे मधुसूदन यज्ञ का स्वामी कौन है, ये शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगने वाले आपको कैसे जान सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल प्रश्न है जिनके बारे में, इनके उत्तर के बारे में हम सबको जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी अगले श्लोकों के अंदर जो भगवान ने कहा है उसका उत्तर बारी बारी से समझाएंगे, तो आज हम उनकी चर्चा करना यहाँ पर चाहेंगे ताकि इन सात प्रश्नों के बाद जो आठवां प्रश्न उठ के आया है उसका भी हमको जो है उत्तर प्राप्त होना चाहिए कि आठवां प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है। पहला है ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं, ब्रह्म के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। ब्रह्म है यहाँ पर इस जो यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है इनडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी अर्थात जीव के। एक्चुअल में ब्रह्म किसको कहते हैं हम लोग, ब्रह्म का अर्थ होता है बहुत बड़ा, जिसमें और बड़ा करने की शक्ति है, जिसमें कुछ भी कार्य करने की शक्ति है। तो ब्रह्म शब्द जो है वो भगवान के अंगों की निकली जो कांति है ब्रह्म ज्योति उसके लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है। एक शब्द आम तौर पे हमें सुनने को मिलता है अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि जब मैं ब्रह्म हूँ अहम् ब्रह्मास्मि और ब्रह्म जो है शब्द भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है तो इसका जो है गलत अर्थ क्या निकालते हैं कि मैं भी भगवान हो सकता हूँ, परंतु दो शब्द हैं, एक ब्रह्म और एक परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म में और ब्रह्म में क्या भेद है? जो सब ब्रह्म के अंदर से परम है, सबसे उच्च है, उसको परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म भगवान है। ब्रह्म शब्द जो है भगवान के अंगों की निकली कांति है, पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल प्रयोग जो है भगवद गीता में शास्त्रों में कई जगह पर जीव के लिए भी हुआ है, उसको भी ब्रह्म के नाम से पुकारा गया। तो ब्रह्म का अर्थ जो है यहाँ कहा गया है इनडिस्ट्रक्टिबल लिविंग एंटिटी। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म शब्द जो है इस्तेमाल होता है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, इटर्नल नेचर ऑफ द सेल्फ। मतलब यहाँ पर जो है शब्द इस्तेमाल हो रहा है अध्यात्म के बारे में लिखा गया है आत्मा। बलदेव विद्याभूषण अपने परपट में लिखते हैं अध्यात्म का मतलब है स्वभाव, स्वभाव। इसके बाद शब्द इस्तेमाल होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जिसके द्वारा आपको इस भौतिक संसार के अंदर बंधन होता है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होना और बार बार मृत्यु, ये जो है कर्म का अर्थ। अब आती है इसके बाद बात अधिभूत। अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत का अर्थ यह है भौतिक प्रकृति से बना हुआ आपका शरीर। भौतिक प्रकृति के कौन कौन से अंग हैं जिनसे आपका शरीर बना, वो 24 तत्व कौन से हैं, 24 एलिमेंट्स। शॉर्ट में कहते हैं तो 8 एलिमेंट्स की चर्चा होती है। 7वें अध्याय के अंदर 4थे और 5वें श्लोक में 8 एलिमेंट्स की चर्चा है। पहले 5 पंच महाभूत कहलाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, मन बुद्धि अहंकार। जब हम इसके बाद 13वां अध्याय पढ़ेंगे, 6ठा 7वां श्लोक पढ़ेंगे, तब जो है बाकी की चर्चा भी आएगी। उसके अंदर जो है 5 ज्ञान की इंद्रियां, कान है, आंख है, नाक है, और जिह्वा के अंदर रस लेने की जो शक्ति, रसेंद्रिय जिसे कहते हैं, और आपकी त्वचा। 5 इनके विषय हैं। कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, और नासिका नाक का विषय है गंध, और जिह्वा में जो रस लेने की शक्ति वाली इंद्रिय है उसका विषय है रस, और त्वचा का विषय है स्पर्श। 5 कर्म की इंद्रियां हैं। 2 पैरों को एक इंद्रिय माना गया है, 2 हाथों को एक इंद्रिय माना गया है, और जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है, जो बोलने वाला पोर्शन है जिससे वाणी प्रकट होती है, वो एक इंद्रिय मानी गई है। और उपस्थ और गुदा, मल और मूत्र त्यागने के स्थान, 2 इंद्रियां हो गई। टोटल ये 5 कर्म की इंद्रियां हैं, टोटल बनते हैं 23। 24वां तत्व जो है गिना गया है अव्यक्त प्रकृति, जिसे प्रधान के नाम से पुकारा जाता है। और यही अव्यक्त प्रकृति जब प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है, तो प्रकृति के 3 गुणों के रूप में प्रकट होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है जिसको अधिभूत के नाम से पुकारा गया है। ये भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील है, आपका शरीर परिवर्तित होता है, जो है वो भी परिवर्तित हो रहा है, और मृत्यु के उपरांत आपको नया शरीर मिलेगा तो भी परिवर्तन हुआ, दोनों स्थितियों के अंदर परिवर्तन। यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात कि शरीर के अंदर जो परिवर्तन है, क्या आते हैं, उत्पन्न होता है, बच्चा था छोटा सा, बढ़ता है, उसके बाद यूथ कुछ काल तक रहता है, उसके बाद ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज के बाद मृत्यु आ जाती है। तो ये परिवर्तन जो है शरीर के अंदर लगातार आते रहते हैं। ये शरीर जो है भौतिक प्रकृति जो है परिवर्तन। अब आती है बात इसके बाद अधिदेव। अधिदेव किसे कहते हैं? अधिदेव कहा गया है शास्त्र के अंदर यहाँ पर कि भगवान का विराट स्वरूप, वो विराट स्वरूप जिसके अंदर जो है आप देखते हैं समस्त सृष्टियां उसके अंदर आपको दिखाई देती हैं। 11वां अध्याय पढ़ेंगे भगवत गीता का तो विराट स्वरूप की चर्चा हो। और इसके बाद आती है बात अधियज्ञ, अर्थात यज्ञ का स्वामी, एंजॉयर ऑफ द सेक्रीफाइस, मतलब जो आप यज्ञ करते हो उसका आनंद लेने वाला को एंजॉय से, उसका स्वामी कौन है। यहाँ प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु जो है भगवान के पुरुषावतारों में आते, कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है? हम लोग जब चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं स्पष्ट, इंद्र या विष्णु हो सकता, तो कृष्ण में और विष्णु में क्या भेद है? यस प्रभु, कैंडल, यस, कृष्ण अवतारी हैं और विष्णु अवतार है, और यस कम होते हैं, गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। हाँ जी, यस सुषमा माता, अब भी बताओ कुछ। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन क्या होती है? व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंड करना। तो क्या एक्सपेंशन है, क्यों एक्सपेंड किया गया है, व्हाट इज द रीजन, क्या फर्क आया? उन्होंने कहा 64 गुण है तो 4 गुण कम होते हैं, व्हाट इज दिस? अभी यहाँ भी किसी ने हाथ खड़ा किया था, और somebody also raised hand, yes, प्रभु बड़ा कठिन कार्य है। और कोई? यस, भगवान कृष्ण ऊपर हैं और विष्णु 3 गुणों के अंदर हैं। अरे बाबा रे, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। यस माता जी, आप कुछ कह रही? मैं तो सोचा था कि आज मैं 8 श्लोक कर दूंगा, ये तो यहीं अटक गया, पहली लाइन में अटक गया। पद्म पुराण में कथा आती है, शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिवजी कहते हैं कि मैं कैलाश लोक के सघन वन में तपस्या कर रहा था, तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी सहित मेरे समक्ष पधारे, और उन्होंने मुझसे कहा, हे रुद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, तुम्हारा अभिष्ट मैं तुम्हें दूंगा। तो शिवजी कहने लगे कि मैंने प्रणाम किया और मैंने उनसे कहा कि भगवान, मुझे आप अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाइए, ओरिजिनल, वो स्वरूप जिसे लोग सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, परात्पर कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, मनोहर मूर्तिधारी कहते हैं, मुझे उस स्वरूप के दर्शन कराए। लक्ष्मीपति विष्णु ने मेरे से कहा कि मेरे उस स्वरूप के दर्शन, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, शिव जी कह रहे हैं कि मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। किस स्वरूप के? डेफिनेशन दिया लक्ष्मीपति विष्णु, क्या कह रहे हैं कि मेरे उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में आना पड़ेगा। तो शिवजी बता रहे हैं पार्वती से कि मैं आकाश मार्ग से वृंदावन पहुंचा और वृंदावन पहुंचने के बाद मैंने क्या दृश्य देखा है, क्या सीन है। सीन है कि एक 16 वर्षीय गोप बालक 16 ईयर्स ओल्ड, वैजंती माला है, पीताम्बर वस्त्र है, श्री वत्स चिन्ह है, दाएं हाथ में बांसुरी है और माथे पे मोरपंख। उसका बायां कोहनी एक षोडशी कन्या के दाएं कंधे पे रखा हुआ है और वो खिलखिला रहा है। जिसके कंधे पे हाथ है वो भी खिलखिला रही है और चारों तरफ गोपियों का समूह है। मुझे देखते ही उस गोप बालक ने कहा, आओ रुद्र, तुम मेरे जिस स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है। कौन सा स्वरूप है भगवान विष्णु का? ओरिजिनल गोप बालक। वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस क्या है बताएंगे आप?
मेरे इस स्वरूप को लोग अपने चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए लोग मुझे निराकार कहते हैं, अरूप कहते। अरूप मतलब इसका कोई रूप नहीं, निराकार मतलब इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान को अर्थात मेरे को अपने चमड़े की आंखों से नहीं देख। जब देख नहीं सकते तो निराकार कह देते हैं, आकार ही नहीं। मेरे गुण अनंत हैं, अनंत असीम हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। मेरे इन गुणों को मापा नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कह देते। मैं अपनी प्रियतमा राधा रानी के साथ हमेशा वृंदावन में वास करता हूँ, हमेशा। मैं इस वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाता, नो वेयर। ये इनकी सखियां इनकी सेवा में रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, तो उसका मार्ग राधा जी से हो गया। यस टू कम वाया राधा, ही कैन नॉट अप्रोच मी डायरेक्टली, ही कैन नॉट कम टू मी डायरेक्ट, मेरे पास नहीं आ सकता। उसको मेरे पास आने के लिए राधा रानी की भक्ति करके उन्हीं के मार्ग से होके आना पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे पहले क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। सबसे पहले क्या नाम यूज करते हैं? यही कहते हैं ना आप? कृष्णा हरे तो नहीं कहते ना, कृष्ण राधा तो नहीं कहते ना, राधा कृष्ण कहते हैं ना। क्योंकि राधा जी के बगैर, राधा जी के मार्ग को पकड़े बगैर, उनकी भक्ति किए बगैर, उनकी परमिशन के बगैर आप कृष्ण को नहीं पा सकते। मेरे सारे कार्य मेरे विस्तार के द्वारा किए जाते, मैं कुछ नहीं करता। मैं इन गोपियों के और राधा के प्रेम में निमग्न रहता, मेरा एक ही कार्य है, रास करना, इनके प्रेम में निमग्न रहना और बांसुरी बजानी, बस। मैं कोई कार्य नहीं करता। जितने असुरों का संहार हुआ है सब भगवान के विस्तार वासुदेव जी के द्वारा, उन्होंने खुद कुछ नहीं, कृष्ण कहलाते हैं, हर विस्तार कृष्ण कहलाता है। जो इन्होंने चर्चा करी कि कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं और 4 गुण जो हैं विष्णु में नहीं है, यही बोला ना आपने, वो 4 गुण कौन से हैं बताइए?
वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी और क्या? प्रेम माधुरी हो गई, वेणु माधुरी हो गई, लीला माधुरी हो गई और रूप माधुरी, सौंदर्य रूप माधुरी। एक प्रश्न करता हूँ, आंसर आपको मिलेगा उस प्रश्न। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर कितने रोल निभाता है? बच्चे को तो कंधे पे बिठा लेगा, उसके लिए घोड़ा बन जाएगा, बनता है नहीं बनता? बनते है नहीं बनते? बनते है ना। वही व्यक्ति जब अपने पिता के सामने जाएगा तो उसका मूड अलग होगा, वही व्यक्ति अपनी बहन के घर जाएगा तो मूड अलग होगा, वही व्यक्ति अपने भाई भाभी के घर जाएगा तो मूड अलग होगा, वही व्यक्ति ससुराल जाएगा तो मूड अलग होगा, अपने बच्चों के साथ पिता का मूड होगा, बहन के बच्चों के साथ मामा का मूड होगा, एक्शन डिफरेंट हो जाएंगे, एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी, स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। व्यक्ति तो एक ही है, भेद है उसमें कुछ? उस व्यक्ति में, व्यक्ति तो इंडिविजुअल एक ही है ना, उसमें तो कोई भेद नहीं है कि बहन के यहाँ गया तो नया बन गया, भाई के यहाँ तो नया बन गया, ऑफिस में गया है अगर बॉस के सामने खड़ा है तो मूड डिफरेंट है, अगर सबॉर्डिनेट्स के साथ खड़ा है तो बॉस की तरह खड़ा है तो मूड डिफरेंट है। कुछ ऐसे गुण हैं जिसको वो पिता के सामने प्रकट करता है और कुछ ऐसे गुण हैं जो पिता के सामने प्रकट नहीं करता, कुछ ऐसे गुण हैं जो बच्चे के सामने प्रकट करता है, कुछ ऐसे गुण हैं जो बच्चे के सामने प्रकट नहीं करता, कुछ गुण हैं जो बॉस के सामने प्रकट करता है, कुछ गुण हैं जो बॉस के सामने प्रकट नहीं करता। बॉस से नहीं कहता मेरी पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन के आपको घुमाता हूँ, कहता क्या? अपने सबॉर्डिनेट से कहता है मेरी पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन के आपको घुमाता हूँ? अपने बेटे से कहता है, बेटी से कहता है, छोटे बच्चे से कहता है और एंजॉय करता है, उसको एंजॉय करता है।
भगवान का कोई भी विस्तार है, भगवान की कोई भी एक्सपेंशन है, उसमें गुणों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। 100% सेम गुण प्रेजेंट है, प्रकट नहीं होते, क्योंकि उसकी जरूरत गोपियों के साथ रास किया है। राम अवतार के अंदर तो मर्यादा रखी एक पत्नी की, तो उस रास लीला को प्रकट करने का वहां पे कोई औचित्य नहीं, को नहीं दिखाया, छुपा हुआ है, उसको अप्रकट रहने दिया, उस गुण को प्रकट नहीं। राम जी ने केवट के साथ अलग गुण है, विभीषण के साथ अलग है, और रावण के साथ। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे विस्तार है, उसी के अनुसार मूड चेंज होता है और उस मूड के अनुसार गुण प्रकट होते हैं। कितने गुण प्रकट करने हैं और कितने प्रकट नहीं कर। भगवान कृष्ण कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय। तो सबसे पहला विस्तार करते हैं अपना बलराम जी के रूप, अपना विस्तार करते हैं बलराम जी। बलराम जी का अब फिर विस्तार बलराम जी से हो रहे हैं। अब कृष्ण ने अपना काम कर दिया, भाई आप आगे करो, मेरी जिम्मेदारी खत्म, लेट मी एंजॉय विद दिस गोपी एंड राधा जी, मेरा कार्य जो है अब खत्म हो गया, अब आपने अपना कार्य करना है, मैं अपना एंजॉय कर। अब बलराम जी जो है अपना एक विस्तार करते हैं, एक चतुर्व्यूह, चार विस्तारों में आते हैं, एक महासंकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव। अब वासुदेव से फिर आगे विस्तार होता है तो आते हैं नारायण, नारायण से फिर विस्तार होता है, दूसरा चतुर्व्यूह बनता है, जिसके अंदर पहले वासुदेव आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं, प्रद्युमन आते हैं, फिर द्वित्य संकर्षण आते। अब इनसे जो है फिर फर्दर विस्तार होता है। अब भगवान को सृष्टि की रचना करनी है, अर्थात ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करनी, तो जिम्मेदारी सौंप दी अपने अगले विस्तार। विस्तार आया पहला प्रथम पुरुष एक आर्णव सागर के अंदर महाविष्णु, जिनको कारणोदकशायी विष्णु के नाम से भी पुकारा जाता, उनके निश्वास से अर्थात सांस फेंका, रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। अब हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पालन करने के लिए एक विष्णु की आवश्यकता है, कंट्रोलर की आवश्यकता। तो महाविष्णु से फिर फर्दर एक्सपेंशन होते हैं, जिनको कहते हैं गर्भोदक शाही विष्णु, वो हर ब्रह्मांड के लिए एक नियंता है, उनके नाभि कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसमें 14 भुवन है, ऊपर से लेके नीचे तक, और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, सबसे नीचे है पाताल लोक, पाताल लोक के बगल में है नीचे नरक लोक, और उसके बगल में है पितृलोक, और ये सारे जो है भगवान के जो है एक आवेश अवतार है, शक्तवेश अवतार है, जिसको अनंत शेष के नाम से पुकारा जाता है, वो अपने सहस्त्र फनों के ऊपर जो है ब्रह्मांड को धारण। अब भगवान ने कहा कि मैंने तो जीवों की रचना कर दी है, और ये जीव जो है इस भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा करने के लिए भौतिक संसार में जाना चाहता है, चूंकि मैं किसी की इच्छा में बाधक नहीं बनता तो मैं इसे रोकूंगा नहीं जाने के लिए, तो जाओ, योग माया अरेंजमेंट करती है और तुरंत जो है आपको भौतिक संसार के अंदर भेज देती है कि आप यहां जाके अपने भगवान खुद बन सकते हो, अपनी मर्जी से एंजॉय कर। परंतु पिता का कर्तव्य क्या है, पिता क्या कार्य कर। छोटा बालक 2.5 साल का 2 साल का 3 साल का पार्क में खेलने जाना चाहता है, ये बच्चा है, ये पार्क में खेलने जाना चाहता, तो आप क्या करेंगे, या तो बच्चे के साथ खुद जाएंगे या किसी को भेजेंगे, जाओ भाई बच्चे की देखरेख करना, टेक केयर ऑफ हिम, ये चोट ना खा जाए, खो ना जाए, पार्क से बाहर सड़क पे ना निकल जाए, तो आप ध्यान रखते। तो भगवान ने कहा कि मेरी संतान, मेरा पुत्र, मेरा जो एक अंश है भौतिक संसार के अंदर खेलने के लिए जाना चाहता है, एंजॉय करने के लिए जाना चाहता है, वो मुझे भूल रहा है, वहां जा रहा है, पर मैं तो पिता होने के नाते जो है उसको नहीं भूल सकता। तो भगवान जो है फिर अपना फर्दर विस्तार करते हैं, तो गर्भोदकशायी विष्णु से आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाए। तो आपके हृदय में जो भगवान विराजमान है वो है क्षीरोदकशायी विष्णु, जिसको कि चतुर्भुज स्वरूप वो प्रधान है। जब ब्रह्मा जी की बात आती है, इंद्र की बात आती है, विष्णु की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, तो इन सब में जो है यज्ञों के जो भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के अंदर जो है भोक्ता जो है केवल भगवान कृष्ण है, अर्थात भगवान विष्णु है। और यहाँ चर्चा की जा रही है कि इंद्र प्रशासक। अब देवताओं का रोल क्या है, देवता क्या करते हैं। जब जीव इतने पुण्य कर्म संचित कर लेता है कि उसको देवलोक की प्राप्ति होती है, और देवलोक की प्राप्ति होने के बाद उस जीव को कोई ना कोई जो है, कुछ में से उच्च कोटि के जीव होते हैं, उनको भगवान जो है कुछ पावर्स दे देते। दिस इज पावर विद आई गिव यू टू कंट्रोल एयर
पवन देवता हो गए।
मैं तुमको अग्नि का कंट्रोल दे रहा हूँ, अग्नि देवता हो गए। मैं तुम्हें स्वर्ग का कंट्रोल दे रहा हूँ, स्वर्ग देवता हो गए। इंद्र हो गए, कुबेर हो गए, वरुण हो गए, मतलब जितने भी देवता हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देवताओं को एक स्पेशल पोस्ट अलॉट कर दी जाती है कि यू विल टेक केयर ऑफ दिस। हमसे उच्च है, उन्होंने अति पुण्य कार्य किए थे तभी तो स्वर्ग लोक में गए। किस तरह से होता है इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक टीचर स्कूल के अंदर गई पढ़ाने के लिए, उसको टीचर है जी आप दूसरी क्लास को पढ़ाएंगे। तरक्की हुई 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, अच्छा आप पढ़ाएंगी साथ में क्लास टीचर भी हैं, थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो गया। 4-5-6 साल बीते, अच्छा अच्छा ये बड़ी अच्छी टीचर है, वेरी नाइस वेरी गुड। अच्छा आप ऐसा करिएगा, आपको जो है वाइस प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, एडिशनल एक आपको पोस्ट दे दिया। 5-6 साल और बीते, आपको प्रिंसिपल बना दिया गया। 5-6 साल और बीते, डायरेक्टर एजुकेशन बना दिया गया। बेसिकली वो तो टीचर ही है, ओरिजिनली क्या है टीचर। आज वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, आज वो प्रिंसिपल है, आज वो वाइस प्रिंसिपल है, आज वो क्लास टीचर है, अपलिफ्ट हो रही है बारी बारी से। इसी तरह जो जीव है जब अपलिफ्ट होता है, ऊपर जाता है, देवताओं की योनि में चला जाता है, देवता बन जाता है, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए पावर्स मिल जाती हैं, परंतु है तो जीव। यही भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में बताएंगे कि जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसको लौट कर फिर पृथ्वी पे आना, he has to come back। तो यहाँ जो है चर्चा आ रही है इसके अंदर, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अर्जुन और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है मधुसूदन। समय हो गया, 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में 2 शब्दों का उत्तर प्राप्त करें। अर्जुन का अर्थ क्या है और मधुसूदन का अर्थ क्या, क्यों शब्द इस्तेमाल किया श्लोक के अंदर, पर्टिकुलरली जो है मधुसूदन शब्द इस्तेमाल किया गया तो क्यों इस्तेमाल किया, क्या किया था मधु ने, नहीं मधु ने क्या किया था कि उसको मारा, कुछ तो किया होगा, यही तो जानना है कि मधु ने क्या किया। ये तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मधु नामक राक्षस का वध किया। उन्होंने कुछ बातें आपके लिए भी छोड़ी हैं कि थोड़ा और पढ़ के ज्ञान हासिल। मधु नामक राक्षस ने सारे वेदों और शास्त्रों को चुरा लिया। जब पृथ्वी जो है उस वक्त शास्त्र विहीन हो गई थी, शास्त्र नहीं रहे थे, तो तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था और जहां वो छुपा हुआ था जल के अंदर, वहां जाके उसका संहार करके उससे सारे शास्त्रों को वापस, मतलब पृथ्वी पर अज्ञान छा गया था, तो मधु नामक राक्षस का वध करके भगवान ने फिर ज्ञान की स्थापना। तो यही जो है देखिए क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। पुस्तकाएं सारे प्रश्न जो शंका के रूप में अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे क्योंकि अर्जुन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति था, अतः सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, इसलिए अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है कि कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाएं अर्थात अज्ञान को नष्ट कर। रूपा जी इसके पीछे मधुसूदन शब्द हुआ है इस्तेमाल, वहां यही परपट में लिख रहे हैं कि अज्ञान को नष्ट कर दे जो अर्जुन के मन में उठ रहा है। अब अर्जुन का क्या अर्थ है, अर्जुन किसे कहते हैं, अर्जुन का मीनिंग क्या। अर्जुन का अर्थ है निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में मन में मल नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है, कलमश नहीं, वो अर्जुन कहलाता। पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो जिसमें अर्जुन आके 36वें श्लोक में कहता है, 33-32वें श्लोक में कहता है कि ये राज्य से क्या लाभ, मैं इसे प्राप्त नहीं करना चाहता। दूसरे अध्याय के अंदर जो है बिगनिंग के श्लोकों में कहता है कि मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, इनको कैसे मारूंगा मैं। आप सोचिए आज के युग के अंदर कोई व्यक्ति आपको घर के अंदर जलाने का प्रयास करे तो आप क्या करोगे, परिवार सहित जलाने का प्रयास। कुंती को 5 पुत्रों के सहित वारणावत के लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया गया। आपको जलाने का प्रयास करे और आप उससे बच निकलो तो बचने के बाद आप क्या करोगे बताइए, छोड़ दोगे उसको, क्षमा कर दोगे। आपके भाई को विष दिया जाए तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको। आपका राज्य छीन लिया जाए, आपको दास बना लिया जाए और आपकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जाए तो आप क्या करो, छोड़ दोगे उसको। यहाँ अर्जुन क्या कहता है, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना ही कृष्ण मैं उनसे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ। वो छोड़ने के लिए तैयार, वो क्षमा करने के लिए तैयार है, वो जाकर भीख मांगकर खाने के लिए तैयार है। दूसरा अध्याय जब पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के अंदर जो 5वां-6वां श्लोक आता है, कहता है ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, मतलब मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूँ, क्षमा कर देना। ऐसा व्यक्ति जो इतना अनर्थ होने के बाद भी जो उसके वैर कर रहे हैं, जो उससे द्वेष रखते हैं, जो उससे ईर्ष्या करते हैं, जो उससे दुश्मनी करते हैं, उसको जो है वो क्षमा करने के लिए तैयार है, ऐसे भक्त के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अर्जुन। ये अर्जुन शब्द की परिभाषा है, उसका मतलब। तो आप समझिएगा कि यहां पर जो है भगवान कह रहे हैं स्पष्ट, जो 7 सवाल किए गए उसमें एक प्रश्न आया कि अधियज्ञ अर्थात आप रहते कहाँ हो हमारे साथ, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में रहता। मैंने आपको बताया ना भगवान आपके हृदय में, भगवान आपके हृदय में रहते। अब उसके बाद प्रश्न करता है कि आपको मृत्यु के समय कैसे याद किया जा सके, किस प्रकार। अब आप बताइए, आप अगले श्लोक करेंगे, 5-6 श्लोक हैं इसके अंदर, मैं सिर्फ श्लोक पढ़ के उसका आपको एक बड़ा सुंदर सा उत्तर बता देता हूँ, क्विक एंड फास्ट। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मेरे धाम आ जाता है, मेरे जैसा बन जाता है। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है कि जीवन के अंतिम समय में आपको भगवान का स्मरण कर, या जैसा स्मरण करोगे वैसा स्वभाव प्राप्त होगा। भरत महाराज ने अंतिम समय हिरण का स्मरण किया, हिरण की योनि में चले गए। आप जिसका स्मरण करोगे वैसी चीजें प्राप्त। अब आता है प्रश्न कि भगवान कहते हैं हर काल में हर समय सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए, क्यों कही ये बात, सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए, सदैव। 8वें अध्याय में जब पढ़ेंगे 14वां श्लोक, भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य तस्या अयम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगी ना, तुम्हारे चिंतन में तुम्हारे स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए, केवल मैं। सततम लगातार नित्य हर समय हर क्षण हर पल हर दिन केवल मेरा स्मरण होना चाहिए। नित्य युक्तस्य योगिना भक्ति योग के द्वारा केवल मेरा स्मरण करना है और कुछ नहीं करना। मिलेगा क्या, तस्या अहम सुलभ, सुलभ मीन्स इजिली अवेलेबल। कैसे कि तुमने पुकारा और मैं चला। कंडीशंस अप्लाई कि तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा अब लेट आए हो, बोला हाँ लेट आया हूँ, क्यों लेट आया हूँ, कि तेरे चिंतन में तेरे 5 पति थे तेरी हेल्प नहीं कर पाए, गुरुजन आए तेरी हेल्प नहीं कर पाए, पितामह आए तेरी हेल्प नहीं कर पाए, राजा को पुकारा तेरी हेल्प नहीं हुई, तू स्वयं थी, दोनों हाथ से धोती पकड़े रही, दांतों से धोती पकड़े रही, मैं कहाँ था। जब तूने मेरा स्मरण किया है तो मैं तुरंत आ गया, मैंने वस्त्र अवतार लिया तेरे को, मैंने नग्न होने दिया, तुझ आसन खींच खींच के थक गया, मैंने वस्त्रों का अंबार लगा दिया तेरे को नग्न नहीं होने दिया। अब यही समस्या आती है, सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल करेंगे। नंबर 1 की स्मरण कब होता, कैसे होता, बढ़िया स्मरण कैसे, स्मरण जो है कब होगा और बढ़िया स्मरण कैसे होगा बताइए, प्रोसेस कैसे होगा, बढ़िया स्मरण लगातार रहे कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ जी, उसने कहा है हे भगवान मैं चाहती हूँ विपदाएं बार बार मुझ पे आए, विपदाएं आती हैं तो आपका स्मरण आता है, और स्मरण आता है तो आप आते, पर एक स्मरण होगा कैसे, दोबारा जोर से बोलो।
देखिए सिंपल सिंपल बातें हैं, एक लड़का और एक लड़की दूर दूर से एक दूसरे को देखते हैं, एक क्षण के लिए स्मरण होता है फिर बात भूल जाती है, फिर स्मरण हो गया फिर बात भूल गई, फिर हो गया फिर भूल गई, याद आती है लड़की लड़के को, लड़की को लड़का याद आते हैं, टेम्परेरली स्मरण होता है फिर निकल जाता है। अब उनका रिश्ता हो गया, शादी होने वाली है, शादी हो गई, सगाई हो गई, उसके बाद लड़के के स्मरण में से लड़की बाहर नहीं निकलती। अब 2 बजे जाओगे ना कमरे में तो फोन पे बात कर रहा होगा, स्मरण रहेगा हर क्षण। लड़की के स्मरण से लड़का बाहर नहीं निकलता, स्मरण रहेगा हर क्षण। बेस क्या बना, बेस व्हाट इज द आधार, किसने बोला रिलेशनशिप, ताली बजाइए इनके लिए, संबंध। जब तक आप भगवान कृष्ण से अपना संबंध नहीं समझ लेंगे, उस संबंध को रियलाइज नहीं कर लेंगे, उस संबंध को अच्छे तरीके से पहचान नहीं लेंगे, उसमें जज्ब नहीं हो जाएंगे, इम्बाइब नहीं हो जाएंगे, तब तक भगवान का स्मरण नहीं कर, इसीलिए मन भटकता, क्योंकि अभी तक आपने भगवान के साथ संबंध को नहीं समझा। लड़का लड़की संबंध समझ जाते हैं तो स्मरण हमेशा रहता। आप जिस दिन भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जाएंगे उस दिन आपका भगवान के साथ जो है स्मरण हर क्षण रहेगा, हर पल रहेगा, हर मोमेंट रहेगा, सततम। अब यहाँ जो है परपट के अंदर बात आ रही है, जो बात कही गई, अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता। आज के युग में थोड़ा मुश्किल, ओल्ड एज आ गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, यंग एज आ गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, मृत्यु के निकट बेहोश, एक हाथ में ग्लूकोज, दूसरे हाथ में ब्लड, पेशाब में नलकी, गले में वेंटिलेटर, स्मरण कहाँ से होगा, हो पाएगा क्या, इज इट पॉसिबल, कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि भगवान के धाम जाना तो इम्पॉसिबल हो गया, जा ही नहीं सकते आप, जा ही नहीं सकते आप। एक्सीडेंट हुआ, भगवान का नाम लेने से पहले, स्मरण से पहले ही ठा हो गया, कैसे करोगे, हाउ इज दिस पॉसिबल। भगवती वसुंधरा पृथ्वी वराह भगवान से प्रश्न करती है, जीवन के अंतिम समय में जब मनुष्य कफ वात आदि दोषों से घिर जाता, गले से घुरघुर की आवाज निकलती, बेहोश हो जाता है, किस तरह से, सूखी हुई लकड़ी
और पाषाण पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता। कोई भी चेष्टा करने में असमर्थ हो जाता है उस समय वो आपका स्मरण कैसे करेगा, वो आपके धाम कैसे आएगा। इसका मतलब है उसका आपके धाम आने का कोई चांस नहीं है। क्या किया जाए? तो भगवान वराह उत्तर देते हैं। दो श्लोक हैं, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैसेज आ गया है कि ड्रामा तैयार है आपके लिए। श्लोक का अनुवाद पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वराह भगवान कहते हैं, यदि कफ वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता और सूखे हुए काष्ठ और पाषाण की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, अगर उसने अपनी स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है तो तब इस स्थिति में मैं उसका स्मरण करता हूँ और उसे अपने घर ले जाता। ये स्मरण का, ये भगवान के नाम के जप का महत्व है कि आपको जब स्वस्थ अवस्था है तब भगवान के नाम का जप करना है, जब स्वस्थ अवस्था है तब भगवान के नाम का स्मरण करना है। आज के युग के अंदर मृत्यु के समय आपके पास वो भाव लाना बड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल है। पर अगर आपने स्वस्थ अवस्था के अंदर भगवान के नाम का जप किया है, भगवान कहते हैं अगर मैं उसका स्मरण ना करूं, मैं उसे अपने घर ना ले जाऊं, मतलब अपने धाम में ना ले जाऊं, तो मुझसे बड़ा कृतघ्न एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा। मुझसे बड़ा एहसान फरामोश। भगवान का आप नाम लेते हो, भगवान का जप करते हो, आप भगवान का स्मरण करते हो, भगवान इसका एहसान मानते, वो इसका एहसान मानते हैं। वो कहते हैं कि तब मैं उसका स्मरण करता हूं, यदि मैं ऐसा ना करूं तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न और कोई नहीं होगा। सो ये जो श्लोक है आठवें अध्याय के अंदर, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। आप देखेंगे कि पहले योग मिश्रित भक्ति आ रही है, उसके बाद शुद्ध भक्ति की चर्चा की। शुद्ध भक्ति कैसे? नित्य युक्तस्य योगिना, भक्ति योग के द्वारा आप जो है निरंतर लगातार एक क्षण के लिए भी आपने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा और भगवान की भक्ति में आप लग गए, इसे बढ़ के कोई बात नहीं। हरे कृष्णा।